लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम बुरे और भले को पहचानने का विवेक सीखें, जीवन पथ को चुनना सीखें तथा उन सभी चीजों को अस्वीकार करें जो हमें यीशु मसीह और उनके सुसमाचार से दूर ले जाती हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कर्मियों ने गाजा पट्टी में एक इसराइली हमले में बच्चों सहित उन लोगों के मारे जाने पर क्षोभ व्यक्त किया है जो पोषक आहार पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गाजा में खाद्य वितरण केंद्रों पर फिलिस्तीनियों के मारे जाने की सिलसिलेवार घटनाओं की एक बार फिर कठोर निंदा की है। एक तरफ तो इसराइल द्वारा काबिज फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में एक संभावित युद्ध विराम की उम्मीदों की खबरों पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। ऐसे में यूएन राहत समन्वय एजेंसी ओचा ने आगाह किया है कि गाजा में पहले से ही बहुत संकटपूर्ण हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। साथ ही हर दिन हो रहे हमलों में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
इसराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके गाजा पट्टी में भोजन, ईंधन और अन्य प्रकार के राहत सामान की आपूर्ति पर पाबंदी है। ऐसे में गाजा में खाद्य वितरण केंद्रों और मानवीय सहायता काफिलों के पास आम फिलिस्तीनियों के मारे जाने की घटनाएं नियमित रूप से हो रही हैं। यूएन मानवाधिकार कार्यालय ओएचसीएचआर की प्रवक्ता रवीना शमदसानी ने शुक्रवार को जिनेवा में पत्रकारों को बताया कि 27 मई को गाजा मानवीय संस्थान यानी जीएचएफ द्वारा काम शुरू किए जाने के बाद से 7 जुलाई तक 798 लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 615 लोगों की मौत जीएचएफ स्थलों के पास हुई है। 183 लोगों की मौतें उन मार्गों पर हुई हैं जहां से होकर मानवीय सहायता काफिले गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में कुल मृतकों में एक बड़ी संख्या महिलाओं व बच्चों की है। गाजा युद्ध के दौरान यूएन कार्यालय ने अनेक बार चिंता जताई है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के सिद्धांतों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। उधर यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने जीवन रक्षक मदद पाने की कोशिश कर रहे लोगों के मारे जाने की घटना को अक्षम्य बताया है, जिसमें लगभग 15 लोगों के मारे जाने की खबर है।
भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वैज्ञानिक अध्ययन संघ IUSSP को इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान अपने अपने क्षेत्रों में जनसंख्या व प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर असाधारण योगदान देने के लिए दिया जा रहा है। यह पुरस्कार 1983 से उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जा रहा है जिन्होंने जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
इस बार के संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार में सिर्फ दो नाम नहीं चमके बल्कि दो कहानियां उभरी। एक कहानी महाराष्ट्र के गांव से निकलकर दलित महिलाओं की जिंदगी संवारने वाली एक महिला कार्यकर्ता वर्षा पांडे की। दूसरी मिसाल है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUSSP जो दशकों से जनसंख्या विज्ञान को दुनिया भर की नीतियों से जोड़ने का काम कर रहा है। वर्षा देश पांडे और IUSSP को 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार मिला है जिन्होंने महिलाओं की प्रगति के लिए केवल आवाज ही नहीं उठाई बल्कि गांव की बेटियों को स्कूल पहुंचाया, महिलाओं को उनकी संपत्ति में हक दिलाया और बाल विवाह के खिलाफ एक जमीनी आंदोलन खड़ा किया। वर्षा देश पांडे यह पुरस्कार ग्रहण करने के लिए शुक्रवार को UN मुख्यालय में मौजूद थी। तो हमारे सहयोगी सचिन गौड़ ने उनसे चलते चलते कुछ बात कर ली।
ये एक सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, सिर्फ ऑनर लेके खुश होने की बात नहीं है, एक एक जिम्मेवारी का एहसास हमें हो रहा है। और सिर्फ मेरे जिम्मेवारी का नहीं, आज की तारीख में पूरा जगत भर में, देश भर में, मेरे महाराष्ट्र में, अपना देश के हर राज्य में जिस तरीके से लोगों के मुद्दों को लेकर, लोगों के बीच में रहकर डिस्क्रिमिनेशन, हिंसा और अनचाही चीजें इर्द गिर्द में हो रही है, उसके खिलाफ में लोगों को बीच में जिस तरीके से सिविल सोसाइटी के जरिए कार्यकर्ता लड़ रहा है, उन सबको ये एनर्जी देने वाला मोमेंट था मेरे लिए और उन्हीं की तरफ से मैंने इसको स्वीकारा है। और हम यूएन लेवल का रिकॉग्निशन जब ले आते हैं तो अपनी अलग अलग देशों में सरकारें जो काम कर रही है उनको भी इस मुद्दे को सीरियसली लेना पड़ेगा, इसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी है।
दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के रक्त में अहम कणों की कमी यानी एनीमिया की स्थिति एक ऐसी मौन लेकिन गहराता स्वास्थ्य संकट है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जबकि यह स्वास्थ्य संकट इस क्षेत्र में सबसे व्यापक और चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक बन चुका है। यह विशेष रूप से निर्धन महिलाओं व किशोरियों को असमान रूप से प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि तुरंत ठोस और समन्वयित कार्यवाही नहीं की गई, तो 2030 तक इसके 1,80,00,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
जी हाँ, ये बात सही है और इसी संदर्भ में विभिन्न यूएन एजेंसियों ने इस सप्ताह चेतावनी जारी की है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र किशोरियों और महिलाओं में एनीमिया यानी रक्त की कमी का वैश्विक केंद्र बन चुका है। इस समय अनुमान के अनुसार लगभग 25,90,00,000 महिलाएं और लड़कियां इस स्थिति से ग्रस्त हैं, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन वहन करने की रक्त की क्षमता घट जाती है। इससे लगातार थकान, गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं और शिक्षा व आर्थिक भागीदारी में भारी रुकावटें आती हैं। एनीमिया केवल महिलाओं और लड़कियों तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर 40% नवजात शिशुओं के कम वजन का एक प्रमुख कारण भी है। विशेषकर निर्धन परिवारों में बच्चों की वृद्धि एवं सीखने की क्षमता को भी गंभीर रूप से ये प्रभावित करता है। इसका आर्थिक असर भी उतना ही गहरा है। एनीमिया के कारण दक्षिण एशिया को हर वर्ष लगभग $32.5 अरब का नुकसान होता है, जो गरीबी व खराब स्वास्थ्य के दुष्चक्र को और मजबूत करता है। हालांकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसे पूरी तरह से रोका जा सकता है और इसका इलाज किया जा सकता है। प्रभावी समाधान उपलब्ध हैं, जैसे कि आयरन एवं फॉलिक एसिड की अतिरिक्त खुराक, अन्य पोषक आहार, बेहतर स्वच्छता, संक्रमण की रोकथाम और मजबूत मातृ स्वास्थ्य सेवाएं। एनीमिया को समाप्त करने के लिए केवल सरकारों की पहल ही काफी नहीं, बल्कि समुदायों, स्वास्थ्यकर्मियों, स्कूलों और परिवारों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
एक नाव की सवारी से निकलता सांस्कृतिक सैर का रास्ता महिलाओं के नेतृत्व क्षमता को सामने ला रहा है। ये दरअसल एक ऐसा शांत मगर गहरा बदलाव है जो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में महिलाओं की अगुवाई में आकार ले रहा है। जो महिलाएं कभी केवल घर तक ही सीमित थीं, वो आज न केवल अपना भविष्य गढ़ रही हैं, बल्कि भारतीय पर्यटन को नया चेहरा दे रही हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
ओंकारेश्वर की मधु वर्मा नर्मदा नदी पर नाव चलाती हैं। वो पर्यटकों को सैर कराती हैं और साथ ही उन्हें स्थानीय पौराणिक कथाएं भी सुनाती हैं। सहज आत्मविश्वास से भरी एक नई भूमिका में। कुछ साल पहले तक मधु ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो कभी नाविक बनेंगी, लेकिन जब उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन गंतव्य कार्यक्रम से जुड़कर प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मानो सब कुछ बदल गया। संवाद कौशल, मंच पर बोलने का आत्मविश्वास और नेतृत्व की समझ ने उन्हें न केवल एक नई पहचान दी बल्कि एक स्थिर आय का स्रोत भी। आज उनकी बेटी स्कूल जाती है और गाँव की अन्य महिलाएं भी अब उनके उदाहरण से प्रेरणा ले रही हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य है 10,000 महिलाओं को हॉस्पिटैलिटी में प्रशिक्षित करना, 40,000 को आत्मरक्षा सिखाना और 50 पर्यटन स्थलों पर महिला नेतृत्व को मजबूत करना। जैसे जैसे महिलाएं आगे आ रही हैं, वो न केवल अपनी दिशा तय कर रही हैं, बल्कि समाज की सोच को भी नया रास्ता दे रही हैं।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
हे प्रभु, तू है जग का विधाता जो सभी जीवों पर करता दया। पग उजड़ा तुम बिन प्रभु जीवन बिखरा।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने गजा के कातिल गिरजाघर में हुए हमले के शिकार लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करते हुए उनके लिए प्रार्थना की है। अपने एक संदेश में 17 जुलाई को पोप ने लिखा, गजा में पौत्र परिवार गिरजाघर पर हुए सैन्य हमले में हुई जान माल की हानि और घायलों के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ। मैं पल्ली समुदाय को अपनी आध्यात्मिक सामीप्य का आश्वासन देता हूँ। मैं मृतकों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की करुणामय दया के हवाले करता हूँ तथा उनके परिवारों और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं तत्काल युद्ध विराम की अपील दोहराता हूँ। केवल बातचीत और मेल मिलाप ही स्थायी शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। गुरुवार को एक इसराइली टैंक से दागा गया गोला पौत्र परिवार के गिरजाघर पर गिरा, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए, जिसमें पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेल्ली भी शामिल हैं। गजा के गिरजाघर पर हमला एवं युद्ध का बेतुका विस्तार पर वैटिकन न्यूज के संपादक अंद्रिया तोर्नेल्ली ने शुक्रवार को अपने संपादकीय में लिखा कि विस्फोट की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। एक इसराइली सेना के टैंक से दागा गया गोला गजा स्थित कैथोलिक पल्ली पौत्र परिवार गिरजाघर पर गिरा। उस परिसर में 2 गिरजाघर और 1 स्कूल में 500 लोग जिनके घर बर्बाद हो गए हैं लगभग 2 साल से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। इसराइली अधिकारियों ने माफी मांगते हुए कहा है कि यह एक गलती थी। इसराइल धार्मिक स्थानों का सम्मान करता है और मामले की जांच की जाएगी। तो नेली कहते हैं कि ये बयान निश्चित रूप से आश्वस्त करने वाले नहीं हैं, न केवल इसलिए कि ध्वस्त मस्जिदों और हमला किए गए गिरजाघरों की स्पष्ट तस्वीरें इनका खंडन करती हैं, बल्कि इसलिए भी कि गजा के एक पल्ली में एक स्नाइपर द्वारा 2 ख्रिस्ती महिलाओं की हत्या की जांच के नतीजों का 1.5 साल से इंतजार किया जा रहा है। इस संबंध में इटली के इसराइली राजदूत जोनाथन पेलेट के शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने कहा, हमारा नागरिक संस्थानों को खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आतंकवादी हर जगह मौजूद हैं, यहां तक कि स्कूलों जैसे सार्वजनिक इमारतों में भी और दुर्भाग्य से पूजा स्थलों में भी। ये बयान चौंकाने वाले हैं क्योंकि ये किसी न किसी तरह से उस घटना का संदर्भ प्रदान करते हैं जिससे गलती कहा गया है। 500 निहत्थे लोग, जिनमें से कई हर दिन रोज श्रीमाला विनती करने के लिए इकट्ठे होते थे, अनजाने में ही निशाना बन गए, क्योंकि जैसा कि राजदूत पेलेट कहते हैं, कभी कभी युद्ध के यही परिणाम होते हैं। संपादक आगे कहते हैं, वैटिकन मीडिया के पाठक और श्रोता भली भांति जानते हैं। हमने गजा में रोजाना होने वाले नरसंहारों के बारे में बात करने के लिए सिर्फ ख्रिस्तों की मौतों का इंतजार नहीं किया है, जहां हर हफ्ते दर्जनों मासूम बच्चे, महिलाएं और पुरुष मारे जाते हैं। वे अंत में लिखते हैं, अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कानून द्वारा प्रदत्त सभी साधनों के साथ हस्तक्षेप करने का साहस जुटाए, बंदूकों को खामोश करने के लिए, नरसंहारों को समाप्त करने के लिए तथा सत्ता के उन खेलों को समाप्त करने के लिए जिनकी कीमत हजारों निर्दोष पीड़ितों को चुकाना पड़ रहा है।
इस नरसंहार को समाप्त करने का समय आ गया है। संत पापा लियो 14वें ने यरूशलेम के लैटिन प्रांति धर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर 32 पिज्जाबाला को फोन किया, जो यरूशलेम के ऑर्थोडॉक्स प्रांति धर्माध्यक्ष थियोफिलोस तृतीय के साथ सैकड़ों टन मानवीय सहायता लेकर गाजा में दाखिल हुए थे। इस हमले में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और पल्ली पुरोहित फादर गैब्रियल रोमानेली सहित 11 लोग घायल हो गए। कार्डिनल पिज्जाबाला ने बताया, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स प्रांति धर्माध्यक्ष और मैं अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पल्ली और पीड़ित परिवार लोगों तथा पूरे समुदाय के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए गाजा की यात्रा कर रहे थे। तभी संत पापा लियो 14वें ने फोन कर हमसे अपनी निकटता, अपना स्नेह, अपनी प्रार्थना, अपना समर्थन और साथ ही युद्ध विराम के साथ साथ इस त्रासदी को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपनी मंशा व्यक्त की। संत पापा लियो ने बार बार दोहराया कि इस नरसंहार को समाप्त करने का समय आ गया है और जो हुआ वह अनुचित है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अब और कोई पीड़ित न हो। लैटिन प्राधिधर्माध्यक्ष ने कहा, मैं अपनी ओर से और पवित्र भूमि के सभी कलिसियाओं की ओर से संत पापा को इस निकटता के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका हमें पहले से ही आश्वासन दिया जा चुका है। हम गाजा के संपूर्ण समुदाय, भाइयों बहनों, पुरोहितों और धर्म बहनों की ओर से भी संत पापा के प्रति अपनी प्रार्थनाओं और धन्यवाद का आश्वासन देते हैं। उधर युद्धग्रस्त म्यांमार में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के धर्माध्यक्षों ने मृत्यु, अशांति और पीड़ा के बावजूद अपने लोगों को सांत्वना और विश्वास का संदेश भेजा। प्रभु की सांत्वना संदेश को युद्धग्रस्त म्यांमार के 3 धर्माध्यक्षों ने वाटिकन की फिदेस एजेंसी को एक संयुक्त पत्र भेजा। पत्र में चल रहे गृह युद्ध और मार्च 2025 में आए भीषण भूकंप जिसमें 3,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, इन मुद्दों पर धर्माध्यक्ष विचार करते हैं कि पिछले 4 वर्षों में इस लड़ाई के कारण लोगों की जान, परिवार, खेत और जमीनें तबाह हो गई हैं। साथ ही हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में विस्थापित हुए हैं। लोग अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। अशांति और पीड़ा के बावजूद धर्माध्यक्ष अपने विश्वासियों को आश्वासन और सांत्वना प्रदान करते हैं। उधर इस हफ्ते की शुरुआत में सोमालिया के पुटलैंड क्षेत्र में हिंसा की एक नई लहर चली, जहां सरकार समर्थक, मिलिशिया और अलगाववादियों के बीच लड़ाई में कम से कम 8 लोग मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए। यह लड़ाई पुटलैंड के धाहर जिले में शुरू हुई, जो क्षेत्रीय राजधानी गारोवे से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। तेल समृद्ध पुटलैंड ने 1998 में अपनी स्वायत्तता की घोषणा की थी और तब से इस क्षेत्र में मोगादिशु के केंद्र सरकार के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।